हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 476 अनय मनस्वी का घर। वो दोनों अभी एक साथ ही होटल से वापस आए हैं और होटल में अब तक के सबको उन दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल चुका है और कहीं न कहीं अंकित भी अब उन दोनों के रास्ते में आने की कोशिश नहीं करता। उसे बुरा जरूर लगता है, लेकिन वो इस बात को सोचकर खुश है कि कम से कम वो अभी भी मनस्वी के साथ काम करता है और दूर से ही सही, लेकिन जिसे प्यार करता है उसे देख सकता है और उसे प्रोटेक्ट भी कर सकता है टाइम पड़ने पर। लेकिन मनस्वी अनय के आगे कभी उसकी तरफ देखती तक नहीं है और अनय ने भी ये बातें नोटिस की हैं, इसलिए अनय को भी इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि मनस्वी पर वो बहुत भरोसा करता है, जो कि काफ़ी टाइम और काफ़ी एफर्ट के बाद उसे उस पर हुआ है। मनस्वी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि ये भरोसा हमेशा बना रहे, इसलिए वो हर तरह से अनय को ही हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट देने की कोशिश करती है। वो वैसे भी उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसा वो उसे फील करता है वैसा और कोई भी नहीं, और अंकित उसे तो कभी भी मनस्वी ने प्रोफेशनल के अलावा और किसी भी नज़र से नहीं देखा। इस वक्त वो दोनों अपने रूम में हैं और मनस्वी बार बार मुड़कर अनय की तरफ ही देख रही है, जो कि बेड पर टेक लगाकर और पैर फैलाकर बैठा हुआ अपना मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल कर रहा है, शायद उसमें कुछ देख रहा है। और मनस्वी वहां साइड पर खड़ी होकर अपने सारे कपड़े और बाकी का सामान समेट रही है क्योंकि उसे पता है अनय को इस तरह से बिछड़ा हुआ सामान और कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो अपनी सारी चीज़ अभी भी एकदम साफ रखता है, बिल्कुल पहले की तरह। मनस्वी भी धीरे धीरे अपनी याद सुधार रही है। उसने अपना बैग, मोबाइल फ़ोन सब कुछ एकदम सही जगह पर रख दिया। अनय अभी उसकी तरफ ध्यान देते हुए समझ रहा है कि उसे उससे कुछ बात करनी है, लेकिन क्या और वो इतना क्यों नर्वस हो रही है इस बात को लेकर ये वो समझ नहीं पा रहा है, इसलिए उसने इस तरह से एक्ट किया जैसे कि वो उसकी तरफ नहीं देख रहा है और अपने में ही बिजी है। आखिर मनस्वी हित गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ देख कर बोली, अनय मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। अनय भी जैसे उसके यही बात बोलने का इंतज़ार कर रहा था, इसीलिए मनस्वी ने जैसे ये बात बोली अनय ने तुरंत ही अपने हाथ में पड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन साइड में रख दिया और बोला, हाँ बोलो क्या बोलना है। अनय ने जैसे ही उसकी तरफ देखकर इतना कहा, मनस्वी तुरंत ही उसके सामने आकर बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथों में पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए थोड़ी सी नर्वस होकर बोली, अनय प्लीज़ देखो गुस्सा मत करना और मेरी बात को ना समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन लिया है। उसकी ये बात सुनकर अनय ने थोड़ी कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो, मैं कब गुस्सा करता हूँ? तुम्हें इतने दिन से मेरे साथ रहती हो, मैं तुम्हें समझदार नहीं लगता क्या जो तुम कोई भी बात बोलने से पहले इतना सोच रही हो? कब से नोटिस कर रहा हूँ मैं कुछ बात करनी है तुम्हें, लेकिन तुम हो कि? उसकी ये बात सुनकर मनस्वी ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, मैंने एक डिसीजन लिया है, आई होप तुम इसमें मेरा साथ दोगे। उसके हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ रखते हुए अनय ने हल्के से अपनी पलकें झपकाई, हाँ बिल्कुल मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? डोंट वरी, तुम बताओ, इतना मत सोचो। एक ही सांस में मनस्वी ने पूरी बात बोल दी, ठीक है तो फिर आज से तुम्हें मेरे होटल में मैनेजर की जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपनी कंपनी ही संभाल सकते हो। अनय ने बहुत ही हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन शादी के वक्त तो तुमने खुद ही ये शर्त रखी थी और अपनी कंपनी का काम तो मैं साथ में देखता ही हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरा भाई वो सब कुछ संभाल रहा है। मनस्वी उसकी बातों का जवाब देती हुई बोल पड़ी, हाँ पता है मुझे, और तुमने सब कुछ अपने भाई के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया है, ये भी मुझे अच्छे से पता है। क्यों अनय क्यों? मुझे पता है तुम सब कुछ, इतनी मेहनत से तुमने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया और एक पूरी कर्ज में डूबी हुई कंपनी को तुमने खड़ा किया और मेरे होटल में जॉब करते हुए अपनी कंपनी का भी ओवरटाइम काम किया और फिर उसे इस हालत में पहुंचाया है कि आज वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो सब कुछ तुम अपने भाई को कैसे दे सकते हो? ऐसा नहीं है मनस्वी, मेरे भाई ने भी मेहनत की है और जब मैं यहाँ पर होता था तब सारा काम वही तो संभालता था, और क्या फ़र्क पड़ता है कंपनी उसके नाम पर हो या मेरे नाम पर, आखिर वो मेरा छोटा भाई ही तो है। मनस्वी ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया, तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से और इतना विश्वास करते हो तुम उस पर? विश्वास न करने जैसा कुछ भी नहीं है, और सारे पैसे उसके पास रहें या मेरे पास मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो यहाँ पर हूं ना, लेकिन अब तुमने मुझे होटल की जॉब से भी निकाल दिया है तो मुझे सोचना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो अच्छा लगेगा इतनी बड़ी होटल इंडस्ट्रीज की मालकिन का पति अनएम्प्लॉयड हो तो। इतना बोलते हुए अनय मनस्वी की तरफ देखकर हंसने लगा क्योंकि वो इस बात को इतना सीरियसली नहीं ले रहा था। मनस्वी उसकी तरफ देखते हुए कुछ सोच रही है। उसके मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन फिलहाल उसने आगे कुछ भी नहीं बोला और अनय ने भी चुपचाप उसकी बात मान ली बिना उससे इसके पीछे का रीजन पूछे। जगत साक्षी, अक्षत का बंगला। अक्षत के लिविंग एरिया में पड़ा हुआ वो बड़ा सा सोफा जिसमें कि 5-6 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। फिलहाल अक्षत नैना के बीच सुनैना भी वहां पर बैठी हुई है और आदित्य उन दोनों के सामने पड़े उसे सिंगल वाले सोफा पर अकेला बैठा है और काफी देर से उन तीनों की तरफ देख रहा है। सुनैना काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर नैना की तरफ देखते हुए कुछ बातें कर रही है, शायद उसकी शादी को लेकर जो अभी अभी अक्षत ने प्रपोज किया उसे बात से रिलेटेड, और बीच बीच में वो अक्षत की तरफ देखते हुए भी कुछ सवाल कर रही है जिस पर अक्षत मुस्कुराते हुए हाँ या नहीं में जवाब दे रहा है और साथ ही दोनों बहनों को बात करते हुए काफी प्यार से देख रहा है। उन दोनों बहनों को ज्यादा टाइम ऐसे एक साथ साथ में बिताने के लिए नहीं मिलता और ये बात अक्षत भी समझता है, लेकिन आदित्य इन सब बातों से थोड़ा सा इरिटेट लग रहा है क्योंकि नैना सुनैना को वहां पर रुकने के लिए बोल रही है और सुनैना भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर तुरंत ही वहां पर रुकने के लिए तैयार हो गई, लेकिन आदित्य उसे अपने साथ घर चलने के लिए कब से बोल रहा है और सुनैना उसकी बात सुन ही नहीं रही है। आदित्य इस बार थोड़ा सख्ती से बोला, सोना घर चलो, क्या बच्चों की तरह जिद कर रही है, और वैसे भी उन दोनों को प्राइवेट टाइम चाहिए। सारी शादी की तैयारी और जो भी है ना वो दोनों खुद आपस में डिसाइड कर लेंगे, आखिर उनकी शादी है, तुम्हारा ओपिनियन इतना मैटर नहीं करता है ना नैना। अक्षत, आदित्य की बात सुनकर सुनैना एक पल के ही रुक गई। उसने अपनी आंख बंद करके दोबारा से खोली और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं कोई जिद नहीं कर रही हूं आदि, लेकिन अब नैना दी अगर खुद मुझे इन्वाइट कर रही है रुकने के लिए तो फिर एक दिन तो मैं रुक ही सकती हूं ना, इसलिए तुम वापस अकेले ही आज घर चले जाओ, मैं कल या परसों एक दो दिन बाद आ जाऊंगी, वैसे भी अभी मुझे अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करना है। नैना ने भी आदित्य की तरफ देखते हुए बहुत ही आराम से कहा, हाँ आदित्य रहने दो ना एक दिन के लिए यहाँ पर मेरे साथ भी, हम दोनों का भी टाइम से एक साथ नहीं रहे हैं, प्लीज उसे अच्छा लगेगा और मुझे भी।
अक्षत दी वहां पर बैठा है और उन सब की बातें सुन रहा है, लेकिन फिर भी उसने बीच में कुछ नहीं बोला क्योंकि वो नैना और सुनैना की तरफ से भी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है और आदित्य की सिचुएशन तो वो पूरी तरह से समझ पा रहा है, क्योंकि नैना जब उससे दूर होकर कहीं भी चली जाती है शूटिंग के लिए या फिर नाराज होकर जब वो सुनैना के घर ही चली गई थी तब उसका भी नैना के बिना दिल नहीं लग रहा था, तो वो समझ रहा आदित्य के साथ भी ऐसा ही कुछ है, इसीलिए वो बार बार सुनैना को साथ चलने के लिए ही बोल रहा है। नैना किस तरह से पूछने पर आदित्य उसे बिल्कुल भी मन नहीं कर पाया और इधर उधर देखते हुए बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम दोनों को भी साथ में टाइम स्पेंड करना है, आखिर आज ही शादी के लिए प्रपोज किया है तो काफी कुछ होगा बात करने के लिए और सुनैना तो बाद में भी आ सकती है ना। हाँ तो बाद में मैं फिर से आ जाऊंगी और वैसे भी अब अगर शादी होगी तब तो मुझे आना ही पड़ेगा और तब तो तुम भी आकर रुकना, आखिर हम दोनों ही तो मेन फैमिली होंगे ना दी की तरफ से, बाकी तो कोई। सुनैना ने एकदम ही ये बात बोल दी, लेकिन फिर जैसे ही उसकी नज़र नैना की तरफ पड़ी और वो उसे थोड़ी सी मायूस लगी तो फिर सुनैना ने भी आगे कुछ नहीं बोला। फैमिली की जहां पर बात आती है नैना और सुनैना दोनों ही एकदम चुप हो जाती है, क्योंकि उन दोनों की फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जो उन दोनों के लिए खुश होता हो या फिर उन दोनों की लाइफ में इतना मैटर करता हो, वो लोग भी किसी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों बहनों ने अपनी लाइफ में खुद ही फाइट करना और आगे बढ़ाना सीखा है। आदित्य और अक्षत दोनों को इस बारे में पता है, इसलिए आदित्य ने तो कुछ नहीं बोला क्योंकि फैमिली और रिलेटिव से उसका भी कुछ इतना कोई खास रिश्ता नहीं रहा है, ज्यादातर ने उसे तकलीफ ही पहुंचाई है। अक्षत ने अपनी तरफ से उन दोनों को थोड़ा चेयर अप करने की कोशिश करते हुए कहा, क्यों और कोई नहीं, तुम्हारा भाई है ना उसे बुला लेना, उसे बहुत अच्छा लगेगा अपनी बहन की शादी की बात सुनकर, और फ्रेंड्स तुम दोनों के फ्रेंड्स तो होंगे ही ना। अक्षत की इस बात पर नैना और सुनैना दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर आखिर सुनैना वहां पर ही रुक गई और आदित्य कुछ देर के बाद अकेले ही वहां से निकलकर अपने घर के लिए आ गया। उसे इस तरह अकेले घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे पता है अगर वो घर में अकेले रहेगा और उसे सुनैना की याद आएगी तो फिर उसका ड्रिंक करने का मन करेगा, क्योंकि अकेलेपन की वजह से ही उसने इस तरह ड्रिंक करना शुरू किया था और फिर सुनैना के साथ और उसके प्यार की वजह से उसने ड्रिंकिंग गिव अप की है, जिसे वो दोबारा से इतनी जल्दी शुरू नहीं करना चाहता, इसीलिए वो घर नहीं गया, वो वहां से कहीं और ही जाने के बारे में सोचने लगा क्रमशः।